पल तेरी हो, हर पल तेरी हो, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
सर्जन के क्लिनिक पहुंचता है। ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वो बहुत जल्दी में है। अभी उसका टर्न, उसकी बारी आई नहीं है, पर फिर भी बार बार उठता है जैसे कि बहुत ही जल्दी है उसे, जैसे कहीं और उसे जाना है। तो जो सर्जन होता है उसने लिखा सत्य घटना है अपनी जीवन कहानी में कि मैं बार बार उस व्यक्ति को देख रहा था, उस मरीज को, कि वो थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है और मुझे लगा शायद बाकी मरीज भी इतने हैं नहीं तो क्यों ना इसे पहले लिया जाए। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाता है, हाथ में कोई चोट है, टाके लगे हैं जिसके टाके आज निकालने थे। तो वो सर्जन उसके टाके निकालता है और निकालते निकालते उससे बातें करने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि शायद आपको कहीं जाना है। वो कहता है हाँ, मुझे 9 बजे से पहले पहुंचना है। वो सर्जन पूछता है कि कहीं और आपकी अपॉइंटमेंट है। वो कहता है नहीं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके साथ में नाश्ता करना है। अच्छा, तो वो पूछता है कहाँ है वो। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है अस्पताल में है। वो कहता है ओ, तो वो बीमार है। वो कहता है हाँ। कहता है कितने साल से वो, कब से अस्पताल में है। तो कहता है 5 साल से अस्पताल में। कहता है अच्छा, 5 साल से, तो आप रोज जाते हो। वो कहता है हाँ, रोज बजे मुझे 9 बजे मुझे पहुंचना पड़ता है, वो मेरा इंतजार करती है। अच्छा, तो वो पूछता है उसे कौन सी बीमारी है। वो व्यक्ति कहता है उसे अल्जाइमर्स डिसीज है। अल्जाइमर्स डिसीज अर्थात जिसमें व्यक्ति सब भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, कोई चीजें याद नहीं रहती है, सारी स्मृतियां लोप हो जाती है, उस बीमारी में जो बुढ़ापे में होती है। तो वो सर्जन पूछता है, क्या वो आपको पहचानती है? वो कहते हैं नहीं, वो मुझे नहीं पहचानती है। तो फिर वो इंतजार कैसे कर रही है और फिर क्यों आप जल्दी जा रहे हो? कहते वो मुझे नहीं पहचानती पर मैं तो उसे पहचानता हूं ना, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। प्रेम अपेक्षा नहीं रखता, प्रेम दूसरे हमें पहचाने, हमें जाने, हमें समझे, ये मांग नहीं करता। प्रेम किसी भी तरह की मांग नहीं करता, प्रेम देना जानता है लेना नहीं। प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ है, प्रेम में कोई भय नहीं है, मोह में भय है, प्रेम में भय नहीं है। मोह हमेशा डरा हुआ रहता है, क्यों? छूटने का भय है, पर प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम में मालकियत नहीं है। मोह में मालकियत है, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, मेरे अतिरिक्त कहीं मत जाना, ना किसी को देखना। प्रेम मालकियत से मुक्त है, प्रेम आकाश में उड़ता है, मोह की जड़े तो जमीन में, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम निर्भय है, निडर है, प्रेम देता है और प्रेम में स्वार्थ नहीं है। अगर वो सच्चा प्रेम है तो ऐसा प्रेम बड़ा ही दुर्लभ है। व्यक्ति अपने मोह को ही प्रेम कहते रहता है, व्यक्ति अपने अपनी वासना को प्रेम कहते रहता है। संसार में जो प्रेम है वो देह के इर्द गिर्द घूमता है, परंतु प्रेम को तो देह से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेम अशरीरी है, प्रेम विदेही है, बॉडीलेस। उसे शरीर का होना और ना होना इससे बहुत उसका संबंध कम है, और प्रेम उड़ान है, उड़ता है। मोह तो बंधन है, बांध के रखता है, प्रेम स्वतंत्र कर देता है। एक बूढ़ा सन्यासी सोचता है कि मेरा जीवन जैसा भी रहा, इतने वर्ष मैंने योगी का जीवन बिताया, अब मुझे अपने जीवन का निष्कर्ष लिखना है। क्या निष्कर्ष लिखूं? क्या अपनी जीवन कहानी लिखूं? क्या लिखूं कि मैंने जीवन में क्या अनुभव किया? और वो कहता है, सोचता है कि जब मैं युवा था तो मुझे भटकाने वाली कई किताबें थी, अब मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले कुछ ऐसा लिख जाऊं कि जो दूसरों को राह दिखाए। जैसे मैं भटक गया था यहां वहां की किताबों से, ज्ञान के उपलब्ध संसार के भंडार से, जिसने मुझे और मुंझा दिया था, मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ लिखूं कि आने वाली पुश्ते उससे कुछ सीखे। तो वो लिखने बैठता है अपनी जीवन कहानी या अपने जीवन का निष्कर्ष, और पहला पृष्ठ, पहला पेज, उसमें एक शब्द लिखता है लव। बता, इससे ज्यादा और क्या लिखूं? ज्यादा लिखूंगा तो वो व्यर्थ हो जाएगा, कम लिखूंगा तो समझ इच्छा होगी ज्यादा लिखूं। वो कहता है एक ही शब्द लिखता हूं, लव। और जब वो लिखता है तो तब अपने जीवन की बातों को याद करता है, उसने कौन कौन सी यात्राएं पार की जीवन में उसके अपने जीवन की। और ये बहुत एक अच्छा अभ्यास है, कहानी से बाहर रखा, परंतु हमने अपने जीवन में कौन कौन सी यात्राएं पार की। एक अमृत वेला पूरा इसी पे होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कौन कौन सी यात्राएं पार की, कौन कौन सी हो सकती। एक तो प्रोफेशन की यात्रा, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कवि है, जो भी है, उसकी एक यात्रा, उसमें आए हुए विघ्न क्या क्या थे, उसकी यात्रा कैसी रही। दूसरी एक यात्रा है एक प्रोफेशन की, एक पढ़ाई की भी यात्रा है जो हमने की, भाषा की यात्रा जो हमने सीखी वो भी एक यात्रा है। एक यात्रा संबंधों की यात्रा, हमारे बचपन से लेकर अब तक कैसे कैसे संबंध थे वो यात्रा कैसी रही। एक ब्राह्मण बनने के बाद प्यूरिटी की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही बचपन से अब तक, या ज्ञान में आने से अब तक की ब्रह्मचर्य की यात्रा किस तरह की रही, वो पूरी यात्रा देखना। एक भोजन की यात्रा, फूड की यात्रा, क्या क्या किया उसमें, कब कब क्या क्या खाया, उसकी पूरी यात्रा बचपन से अब तक की, क्या खाया वो याद नहीं करना है। उस पे आए हुए विघ्न बाधा मार्ग क्या क्या हुआ उसमें, वो सारा पूरे जीवन भर की यात्रा, भोजन की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, संबंधों की यात्रा कैसी रही हमारी यात्रा जब से चालू किया तब से अब तक। फिर ज्ञान की यात्रा कैसी रही, योग की यात्रा कैसी रही बचपन से लेकर, ज्ञान जन्म जब से हुआ तब से अब तक की यात्रा कैसी रही। तो ऐसी हर व्यक्ति व्यक्तिगत यात्राओं का चिंतन करे, इन सब में आए हुए फिर विघ्न, और फिर ऐसी सात यात्राएं बनानी है अपने जीवन की हर एक व्यक्तिगत रूप से, और उन यात्राओं में आए हुए कौन कौन से विघ्न थे, और अब साक्षी होकर यहां बैठना है, उन यात्राओं को रोज देखना है। पहले तो बड़ी सोच समझ के वो यात्राएं बनानी है, ये वाली नहीं जो हमने लिखी, इसमें से एक दो ले सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य की यात्रा सबकी समान, सब लोग ये पॉइंट अवश्य ले सकते हैं, ये हर एक की यात्रा है, पवित्रता की यात्रा। एक है मैरिड लाइफ की यात्रा, जिसकी शादी विधि हो गई है, शुरुआत से शादी से पहले, फिर शादी, फिर बाद में क्या हुआ, फिर कहां, जो कुछ हुआ उसमें, वो पूरी यात्रा मैरिड लाइफ की यात्रा। इसलिए कहा ये यात्रा सबकी समान नहीं हो सकती, हर एक अपनी अपनी यात्रा बनाए, ऐसी सात यात्राएं, और रोज अमृत वेले फिर उन यात्राओं को, एक एक यात्रा को सकाश दे भविष्य के लिए, कि अब तक तो ये गड़बड़ रहा ब्रह्मचर्य, पर आगे की यात्रा जो होगी वो निर्विघ्न। आपका अब तक का पारिवारिक जीवन, एक कुटुंब की यात्रा, पारिवारिक जीवन की यात्रा, वैवाहिक जीवन की यात्रा कैसी रही, अब आगे क्या करना है उसमें, भोजन की यात्रा, आत्मसंयम की यात्रा, कब कब गाजी बने उसकी यात्रा, तो उस लेखक ने, कहानी पर आ रहे फिर से, पहले पृष्ठ पर लिखा और अपने जीवन की यात्रा याद की, वो बहुत कुछ उसे दिखा, कैसे कोई स्त्री अपने बच्चे को सहला रही है, कैसे दो बच्चे गले मिल रहे हैं, कैसे तूफान आ गया था एक बार बचपन में, घर की क्या हालत हो गई थी। फिर दूसरा पृष्ठ खोला उसने और उसमें फिर सोचा अब क्या लिखूं, फिर सोचने लगा कैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, कैसे देश में अकाल पड़ गया था, कैसे सरकार ने एक बात जो हो गई थी उसके ऊपर पर्दा डाल दिया था कोई कांड, और दूसरे सोचने के बाद दूसरे पृष्ठ पर एक ही शब्द लिखा लव, फिर तीसरा पेज खोला और फिर अपने जीवन को याद करने लगा कि और क्या क्या यात्राएं मैंने की। उसे बहुत कुछ याद आने लगा, जो जो हुआ जीवन में, पड़ोसी उनका कुत्ता मर गया था, फिर वो बिजनेसमैन उसने अपने दोस्त को फिर से गले लगाया था, फिर वो अमीर साहूकार जा रहा था, कैसे उसने उस भिखारी को पैसे दिए थे, कैसे वो महिला जो घर छोड़कर झगड़ा करके चली गई थी और फिर वापस आई थी, कुछ कुछ याद आने लगा उसको, यहां वहां की हर बात याद आने लगी। तीसरे इसमें लिखा लव, फिर चौथा पेज खोला और ऐसा करते करते उसने पूरी किताब भर दी और एक साल के 365 पेजेस में एक ही शब्द लिखा लव। किताब पूरी हुई, पब्लिशर के पास गया पब्लिश कराने के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा ये किताब है कोई, तुमने कुछ है ही नहीं लिखा, हर पेज में एक ही शब्द लिखा है लव लव लव, बस आगे पीछे कुछ भी नहीं। पर वो तो सन्यासी था, योगी था एक, तो उसने उसकी बहुत सारी कॉपियां बनाई और अपने मित्रों को और जो लोगों को वो जानता था उनको दी, और धीरे धीरे लोगों को वो बहुत पसंद आ गई और लोगों को ये कहा आप लोग भी ऐसी किताब लिखो, और हर किताब में हर पुष्ट में एक ही शब्द लिखो लव, और लोगों ने भी लिखना चालू किया। तो जीवन में जो कड़वाहट थी वो सारी धीरे धीरे उनके जीवन से भी खत्म होती गई। ये कहानी एक विदेश की महिला ने लिखी है जो कि हीलिंग करती है। उसने कहा कि प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में उपचारक शक्ति है। प्रेम में क्या है? हीलिंग पावर। तो प्रेम की इतनी सारी बातें हमने देखी। कल की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने, रूहानी प्रेम क्या करता है, क्या करता है? शांति का आधार, शांति लाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में जब खो जाते हैं तो अशरीरी बन जाते हैं, और जब अशरीरी बन जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है, तो शांति के भिखारी को भी क्या मिल जाता है? प्रेम के भिखारी, शांति के भिखारी संसार में जो है उनको भी प्रेम की अनुभूति होती है। तो प्रेम शांति का अनुभव कराता है पहला। और आशीष भाई प्रेम क्या करता है, कल की अव्यक्त वाणी? अरे बोलो ना। सेवा में सफलता का आधार रूहानी स्नेह है, और
अभिमानी को भी ज्ञान
मिलेगा, अभिमानी का भी सिर झुका देगा और अभिमानी को भी ज्ञान मिलाएगा, और प्रेम दिलों को समीप लाएगा, और प्रेम ब्राह्मण परिवार का आधार है, नींव है ब्राह्मण परिवार का, आधार स्तंभ है। जैसे योगी जीवन का आधार निश्चय है, उसी तरह ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन, आधार, नींव क्या है? प्रेम। कौन सा प्रेम? रूहानी प्रेम, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो स्नेह के सागर क्या रिटर्न देने आए हैं? किससे मिलने आए हैं? मुरब्बी बच्चों से मिलने आए। क्या देने आए हैं? स्नेह का रिटर्न देने आए। जैसे याद और सेवा का बैलेंस कहते हो, वैसे प्रेम और सेवा का बैलेंस। तो प्रेम ये सारी चीजें कर देता है। तो सबसे पहली चीज जो कल की वाणी में कही बाबा ने वो क्या थी? प्रेम। अपने आप को देखो। आज की मुरली में ढेर सारी सेल्फ चेकिंग की पॉइंट है। अपना ही चेहरा देखो। अंदर क्या है? प्रेम है, घृणा है, नफरत है, क्या है? तो प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा इमोशन है, ऐसा कहा जाता है। एक युवक होता है, उसे प्यार हो जाता है एक स्त्री से, और बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसको बताया? वो कहते हैं नहीं। क्या तुमको वो जानती है? कहते हैं नहीं, नहीं जानती है। वो फिर भी प्यार है? हाँ, कहता है बहुत। वो कहते हैं ऐसे ऐसे क्या होगा, तुम जाके उसको बता दो एक बार। और वो जो स्त्री होती उसको भी पता होता है कि शायद इसको भी प्यार है मुझसे, तो वो जाके उसको बताता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, पर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और जब उन दोस्तों को पता चलता है, वो सोचते हैं कि अभी ये उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है, तो उसके पास जाके उसको पूछते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कुछ मत कर लेना, ज्यादा उदास वगैरह कुछ मत होना। वो कहते हैं उदास, मैं क्यों उदास हूं? उदास होने का तो कोई कारण ही नहीं है। क्यों क्यों कहा होगा ऐसा? वो कहता है आई हैव नथिंग टू लूज, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसका मुझसे प्यार ही नहीं था, पर नुकसान तो उसका हुआ है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो उसको दिल से प्यार करता था। तो प्रेम कोई डिमांड नहीं करता, कोई मांग नहीं करता, प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, प्रेम जबरदस्ती नहीं करता, प्रेम भीख नहीं मांगता। प्रेम बड़ा ही निर्मोही है। प्रेम कैसा है? बहुत निर्मोही है। प्रेम की कोई अपेक्षाएं नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। अपेक्षाएं तो मोह की होती है, प्रेम की कोई अपेक्षाएं नहीं होती है। और इस संसार में जितने प्रेम है, उन सब प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है परमात्मा प्रेम, अविनाशी प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव। डिवाइन लव सबसे सुप्रीम है, सबसे परम है, सभी प्रेम का वो राजा है। और जो परमात्मा प्रेम है वो सबसे ऊंचा होता है, उससे ऊंचा इस संसार में और कोई प्रेम नहीं है। और वास्तविक प्रेम शब्द केवल प्रभु प्रेम के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मनुष्य जो भी प्रेम करते वो वास्तव में प्रेम बहुत कम होता है, होता ही नहीं है प्रेम। उसमें कुछ कुछ समय होता है, स्वार्थ भरा होता है, इसलिए वो प्रेम नहीं होता है। उसकी मांगे होती है, उसके उसे कुछ चाहिए होता है रिटर्न में, बड़ा स्वार्थी होता है। तो सबसे पहली बात जो कल की मुरली में बाबा ने कही वो थी, ये क्या है? रूहानी प्रेम है। रूहानी प्रेम से किसी भी अभिमानी आत्माओं को तुम, अभिमानी आत्मा को तुम समीप ला सकते हो, किसी भी दिल को समीप ला सकते हो। सेवा का आधार है, स्नेह और सेवा के बैलेंस से सफलता प्राप्त कर सकते हो। स्नेह से और क्या होता है? शांति का अनुभव होता है, अशरीरीपन का अनुभव होता है, खोने का अनुभव होता है। तो प्रेम के बारे में इतनी सारी बातें कल की मुरली में थी। तो सबसे पहली बात थी कल की मुरली में प्रेम। दूसरी पॉइंट, ड्रामा। क्या कहा था ड्रामा के लिए? ये स्नेह का रिटर्न मिलना ड्रामा में नोंदा हुआ है, ये स्नेह का रिटर्न मिलना ड्रामा में नोंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा ही निष्पक्ष है, निष्पक्षपाती है। ड्रामा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। जिसने जन्म जन्म जो जो किया वो उसको मिलेगा जरूर। जन्म जन्म जिन्होंने पुण्य किए वो पुण्य एक दिन उदय होंगे और अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा। जन्म जन्म जिन्होंने प्रेम दिया है उनको प्रेम मिलेगा, और जिन्होंने नहीं दिया है वो मांगते रहेंगे भीख, परंतु मिलता नहीं है। तो प्रेम बाबा ने ड्रामा के रास को बताया, ये जो तुमको मिला है स्नेह का रिटर्न, ये ड्रामा में नोंदा हुआ था। तो इस ड्रामा को समझना है, 18 जनवरी की मुरली थी, उसने कहा था इस ड्रामा में किसी का कोई भी दोष नहीं है, ये सब होगा। इसके लिए ड्रामा के निर्दोष स्वभाव को जानना है, हर एक्टर के निर्दोष स्वभाव को जानना है। इस ड्रामा का कोई भी एक्टर दोषी नहीं है। किसको किसको किस लिए दोषी ठहरा है, हम कौन है किसी को किसी के बारे में फैसला करने वाले। तो यहां पर कोई भी दंड का अधिकारी नहीं है, और होगा भी तो हम उसे दंडित ना करें अपने संकल्पों से। हमारे संकल्प किसी के लिए शाप ना बन जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसका ऐसा हो जाए, ये है बद्दुआ देना। क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्पों में सिद्धि समाई हुई है, और बद्दुआ दी तो वो हो भी जाएगी, परंतु उसका पाप बड़ा होगा बहुत। इसके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों का कल्याण हो, बहुतों को सुख मिले, हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले। अगर किसी को दुख देते हैं तो दुखी होके मरेंगे, अगर किसी को दुख देते हो तो गाजी कहलाएंगे। और विकार की दृष्टि गई तो आज की मुरली में बंदर बन जाओगे, लूले लंगड़े बन जाओगे। आज की मुरली में क्या बन जाओगे? लूले लंगड़े। गाजी इस्लाम धर्म का शब्द है, उसमें बहुत अच्छा अर्थ है उसका, बहादुर वीर शूरवीर। परंतु आज की मुरली में बाबा ने उसका कुछ उल्टा अर्थ बता दिया। तो ड्रामा में नूंद था, इसलिए इसका तुमको क्या मिला? रिटर्न मिला। उसके बाद में तीसरी पॉइंट है, कल की मुरली से जहां उमंग उत्साह है वहां पर थकावट नहीं होगी। क्यों? एक व्यक्ति जिसमें उमंग उत्साह बिल्कुल नहीं है उसको एक काम दिया गया, दूसरे को भी वही काम दिया गया, दोनों में अंतर एक ही है, एक में उमंग है एक में नहीं है, एक की इच्छा ही नहीं है करने की। थोड़ा करने के बाद कहेगा बहुत हो गया, आज का काम पूरा हुआ, थकान सी लग रही है, एक बार सारा चेकअप करके आता हूं, अभी अभी हुआ था एक महीना पहले, सब नॉर्मल था। तो उमंग उत्साह जहां है वहां क्या होगा? कोई थकान नहीं। उमंग उत्साह जहां है वहां क्या नहीं होगा? थकान। और क्या नहीं होगा? आलस्य नहीं होगा। और उमंग उत्साह है तो कोई टेंशन नहीं है, उमंग उत्साह है तो बहानेबाजी नहीं होगी, उमंग उत्साह होगा तो टालने की भाषा नहीं होगी, उमंग उत्साह होगा तो क्या नहीं होगी? लेट लतीफ नहीं होंगे। उमंग उत्साह होगा तो मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं तो चली। मां ऐसा कहती है कि बच्चा बीमार है, सुबह से देख रही है 5 बज गए, वो कहती है मेरी ड्यूटी पूरी होगी, अब तुम देख लेना, मैं तो चली। तो जहां उमंग उत्साह है वहां पर समय की मियाद नहीं है, जहां उमंग उत्साह है वहां पर एकाग्रता है, जहां उमंग उत्साह है वहां पर मरमर के जीते नहीं और जीजी के मरते नहीं है। एक है मरमर के जीना और दूसरा है जीजी के मरना। अर्थात दुखी नहीं है। तो जहां उमंग उत्साह है वहां पर और क्या नहीं है? वहां हिम्मत होती है, वहां ताकत ज्यादा आ जाती है। उमंग उत्साह है तो ताकत ज्यादा होती है, उमंग उत्साह नहीं तो ताकत ही कम होती है। अपने आप मन में ताकत होती है ना, मनोबल बाबा का प्यार खींचता है। तो बाबा ने कहा ये मुरली है 85 की, सितंबर की, तब क्या हो रहा था? विदेश सेवा, यूथ रैली, पद यात्राएं, वो सारे निकले थे यहां वहां से दिल्ली पहुंचने के लिए। तो उस समय की ये मुरली चल रही है। तो बाबा ने कहा थकान नहीं। तो जहां पर उमंग उत्साह है थकान नहीं, अगर थकान लग रही है, अनुभव होता है थकान का, अर्थात उमंग उत्साह कम है, अंदर अंदर से खुट रहे हैं, कुड़ रहे हैं, चौथा पदयात्रा, चौथा वीआईपी वो जगदीश भाई मिले हैं पोप से, क्या कहा उसमें, ये भी अच्छी सेवा है, दृष्टि देकर आए। तो किसी भी बड़े व्यक्ति को मिलो तो उसका भाग्य है जो उसे हमारी दृष्टि मिल गई, कितना अच्छा संकल्प है। कल एक बहन सुना रही थी, वो किसी गांव में गए, सारी माताओं का प्रोग्राम था, तो जाकर देखा कोई भी नहीं। तो इससे जा रहे थे ऑटो से, तो जाते जाते एक एक जो मिल रहा था कह रहे थे वहां जाना वहां जाना वहां जाना, वहां पहुंचे कोई भी नहीं, और फिर माइक पे एक एक को अनाउंसमेंट किया, आओ 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 आओ। कितनी मुश्किल से सेवाएं करती है छोटे छोटे गांवों में, जहां तक अभी तक लोगों ने सुना नहीं है कुछ ब्रह्मा कुमारी इसका। तो एक तो वो सेवा है और दूसरी है वीआईपी की सेवा। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनकी भी सेवा आवश्यक है। राजा को जीत लो तो प्रजा जेब में, सरकार ही हमारी जेब में आ गई तो प्रजा तो आ ही जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सेवा है जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी भी सेवा करनी है, उन तक भी हमें पहुंचना है। और बाबा ने जैसे कहा ना दृष्टि देकर आ गए, तो दृष्टि देनी है उनको भी, हमारी दृष्टि क्या कर देगी उनके लिए, हमारी दृष्टि क्या कर देती है, हो सकता है साक्षात्कार हो जाए। नर्स को कहा था ना उस दिन, अगर तुम दृष्टि दे तो साक्षात्कार भी हो सकता है, अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी हो तो। चार पांच दिन पहले था ना, इतना बड़ा पैराग्राफ था नर्स के लिए, जर्नों में झुक जाएंगे तुम्हारे सर्जन विर्जन। तो वीआईपी की सेवा। उसके बाद में पांचवा पदयात्रा। बाबा ने कहा कि पदयात्रा में शुरुआत में तो तुमको मुश्किल हुई, बाद में फिर सहज हो गया चलना, इतना लंबा चलना। कोई हमसे कहे यहां से हम अहमदाबाद तक पैदल चलना है और कोई हमारा अभ्यास नहीं है, तो शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट, नहीं हम तो शायद नहीं चल पाएंगे, पर जब देखेंगे सभी तैयार हो गए, आप चल रहा है, बा चल रहा है, आ बा खा सब चल रहे, और हम भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कर सकते हम नहीं कर सकते, हम भी चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें बहुत पावर आ जाती है जब देखते हैं सब कर रहे, मैं पीछे कैसे रहूं। फिर अभी 2007 में भी, 2007 में या 8 में पद यात्रा निकली थी ना, 7 में, उसमें भी कितनी लंबी यात्राएं निकली थी और कितना उमंग उत्साह से चलते थे वो सारे। आप गए थे? यात्राओं में पावर आ जाती है, जहां पर वो पदयात्री पहुंचते थे वो गांव वाले कितना स्वागत करते थे उनका, पाव धोते थे, क्या क्या करते थे, जैसे कि जैसे देव देवी देवताएं आ गए गांव में, वर्षा होती थी, क्या क्या करते थे। और वो गीत जो निकले थे उस समय युद्ध सिंह सॉन्ग्स वाले, पावरफुल गीत जो निकले थे, तो हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे पुराने युद्ध ग्रुप युद्ध सॉन्ग्स और न्यू युद्ध सॉन्ग्स। तो बाबा ने कहा पदयात्रा में पहले मुश्किल हुई पर बाद में सहज हो गया। तो कोई भी बड़ा काम जो होता है उसमें पहले मुश्किल होती है और बाद में सहज हो जाता है, इसलिए जब मुश्किल दिखे तो छोड़ नहीं देना उसको, ये मेरे से नहीं होगा, पहले ही रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं आता ये। अरे आता नहीं है तो सीखो, हर चीज सहज हो जाती है, पहले तो हर चीज मुश्किल लगती है हर एक को, जो कभी की नहीं हमने मुश्किल ही लगेगी, चाहे वो भाषा सीखना है, चाहे कोई कार्य हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई हुनर कोई स्किल कोई भी चीज, उसके लिए अभ्यास चाहिए, समय चाहिए, डिवोशन चाहिए, तो छोड़ नहीं देना है। उसके बाद में क्रिश्चियन और क्राइस्ट का क्या है, क्रिश्चियन और कृष्ण का, क्राइस्ट और कृष्ण का। तो ये है कृष्ण, ये है जीसस क्राइस्ट, क्या कनेक्शन है दोनों का। एक लेखक है, उसने किस सदी में था वो, 1813 एंड 1883 में था, ऑथर करसे ग्रेव्स, उसने 346 इन दोनों के अंतर निकाले थे या सिमिलैरिटीज, क्या क्या अंतर सिमिलैरिटी है दोनों में? क्यों बाबा ने कहा इन दोनों की राशि मिलती है, कृष्ण की और क्राइस्ट की? कितने डिफरेंस है बताए? 346 सिमिलैरिटीज। तो क्यों कहा ये बाबा ने? कृष्ण और क्राइस्ट में राशि एक है, एक तो क्र क्र कृष्ण क्राइस्ट एक, उसके बाद में दोनों का जन्म, एक का जन्म कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। इसका जन्म कहां हुआ? भैंसों वो जो तबेला था घोड़ों का पेड़ भेड़ियों का, उसमें अस्तबल में। उसके बाद में कृष्ण का जो जन्म है, ये कृष्ण को इधर नहीं, इधर क्राइस्ट डालो और कृष्ण इधर। क्राइस्ट के जन्म को इमैकुलेट कंसेप्शन कहा जाता है, ये शब्द आता है इमैकुलेट, इमैकुलेट अर्थात परम पवित्र। मेरी जो है वो वर्जिन है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है वहां पर। कृष्ण का जन्म तो अलौकिक ही है, उसमें देवकी का कोई रोल नहीं है। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो राजा हिरोड था, बड़ा आतताई, यहां पर कंस जी थे। जब कृष्ण का जन्म, क्राइस्ट का जन्म हुआ, जन्मते ही वो बेथलहम से जेरूसलम जाना चले गए लेकर उसको। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसको लेके उधर चले गए। जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ था, हिरोड को जैसे ही पता चला कि कोई देव पुरुष आया है, उसने जितने बच्चे उस दिन जन्म लिए थे सबको मार दिया हिरोड ने। और कंस ने क्या किया? जितने बच्चे जन्म लिए थे, जब पता चला कि देव तेरा काल तो उधर जन्म ले चुका है, देव की का आठवां पुत्र, तो सारे बच्चों को मार दिया। बचपन से ही इधर कृष्ण को सताने के लिए, मारने के लिए कोई ना कोई आते ही रहा। कितने आए? बचपन से ही परीक्षा है। इधर जीसस क्राइस्ट के लिए भी बचपन से ही परीक्षाएं थी। 40 दिन तो उपवास था, उसमें माया ने उसे बहुत तंग किया, बहुत टेम्प्ट किया। उसके बाद में जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वो तीन दैवी लोग आए थे तीन दिशाओं से। उन्होंने कहा कि ये ईश्वर पुत्र है, ये महान आत्मा ने जन्म लिया है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वैसा इधर भी भविष्यवाणियां हुई थी। इसके लिए भविष्यवाणी होती कि वे तारण करेगा, तारणहार, मसीहा जन्म लेगा। बाइबल में एक दृश्य है, इसके पहले एक जॉन है, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन के पास लोग आते, कहते क्या तुम ही वो मसीहा हो जिसकी चर्चा शास्त्रों में? वो कहता नहीं, मैं वो मसीहा नहीं। वो जब आएगा ना, आई विल डिक्रीज एंड ही विल इंक्रीज। जब वो आएगा तब मैं नीचे जाऊंगा, वो ऊपर हो जाएगा। मैं थोड़ी वो मसीहा हूं, मैं तो उसके जूतों की लेस बांधने के भी लायक नहीं हूं। ऐसा जॉन का वर्षन है, जॉन कहता है। और दिखाया है जॉन और जीसस क्राइस्ट की मुलाकात। जॉन देखता है ये कौन आया, पहली एंट्री जो है जीसस क्राइस्ट की, वो देखती है ये देखता है ये कौन है। उसके कंधों पर वो जैसे वो कबूतर बैठा, यही वो भगवान का फरिश्ता है। तो वो उसके सामने झुकता है, फिर तो जॉन को पकड़ लेते हैं, जॉन को मार देते हैं वो लोग, वो दूसरी बात है, तो अलौकिक है। उसके बाद में जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, कृष्ण ने भी कम नहीं दिखाए, वो तो चमत्कारों से भरा पड़ा है उसका जीवन। तो इधर भी चमत्कार है, उधर भी चमत्कार है। कोई मरा था उसको जिंदा कर दिया, कोई बीमार था उसको ठीक कर दिया, कोई आंख नहीं थी उसको भी ठीक कर दिया, बहुत सारी चीजें। उसने गीता सुनाई, इसने सर्मन ऑन द माउंट, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रवचन है जो हमने यहां लिया था, एक मास चला था जो, तो वो। और फिर लास्ट में इसको सूली पे लटका दिया गया, इसको एक शिकारी ने मार दिया। इसने अपने मारने वाले को माफ कर दिया, इसने कहा कर्मों का हिसाब था। जब कृष्ण बैठे थे, वो अंगूठे में तीर चला दिया ना, जो शायद पूर्व जन्म का बाली था जिसको श्री राम ने छुपके से मारा था। हाँ, तो बाबा ने कहा दोनों की राशि बहुत मिलती है, दोनों की जीवन कहानी थोड़ी थोड़ी समान है, क्राइस्ट और कृष्ण। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्राइस्ट जो था उसके लिए कहा जाता है कि वो बचपन में दिखा फिर बाद में गायब हो गया। एक किताब लिखी है द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कहना है लोगों का कि वो भारत आया, भारत के वेद शास्त्र पढ़े और वो वापस गया ही नहीं, और कश्मीर में एक जगह है जहां उसकी समाधि है, जहां उसने शरीर छोड़ा, ऐसा भी गायन है, गुफा, बहुत सारी चीजें। तो दोनों में क्या है, समानता है बहुत सारी। तो ये थी छठवीं पॉइंट। सातवीं, लंदन ग्रुप से मुलाकात। बाबा ने कहा मुरली का महत्व बहुत है और योग का महत्व बहुत है और वातावरण को अच्छा रखते हैं, कोई बात हो गई तो वातावरण को खराब नहीं होने देते, छोटी छोटी बातों में वातावरण खराब ना हो। तो मुरली का महत्व, अमृत वेला योग का महत्व और वायुमंडल शक्तिशाली बनाना, सातवीं पॉइंट। आठवीं पॉइंट, ब्राह्मणों को भी पालना देनी है जो मधुबन में नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं, वो मधुबन आ नहीं सकते, उनके लिए तो वही मधुबन है। मधुबन में तो दोनों है, क्या संगम युग और सतयुग। उन आत्माओं को भी पालना देनी है। उसके बाद में नाइन्थ पॉइंट, हाजी निर्मल शांता दादी, आदि रत्नों का ये हाजी क्या है, मूल संस्कार है, और यह हाजी क्या बना देता है, हुजूर बना देता है, हुजूर बना देता है। हाजी कहते कहते मास्टर बन जाते हो, हुजूर ही बन जाते हो। उसके बाद में अगला पॉइंट निर्माणता, वो दो ब्रदर है ना, चार्ली और केन, कहा ना निर्माणता क्या करती है, निर्माण का कार्य करती है। एक है निर्माण छोटा न, एक है बड़ा न, निर्माण और निर्माण, एक है न और दूसरा है बड़ा न। बड़ा न अर्थात कंस्ट्रक्शन, और छोटा न अर्थात, छोटा न के दो अर्थ है, छोटा न के दो अर्थ है, एक तो निर्माण अर्थात जिसको मान की कामना नहीं है, विनम्र है, जो ह्यूमिल हम्बल है एकदम, जिसको एकदम निरहंकारी है, वो एक छोटा न का अर्थ। छोटा न का दूसरा अर्थ है बड़ा न, नहीं ये हिंदी भाषा में, छोटा न का एक अर्थ है बड़ा न। तो कंस्ट्रक्शन के लिए दोनों ही शब्द राइट है, निर्माण और निर्माण, दोनों अर्थात कंस्ट्रक्शन। पर जब केवल छोटा न प्रयोग किया गया और सब शब्दों को देखते हुए, तो छोटा न का अर्थ है निरंकारिता। तो जब बाबा कहते हैं निर्माण बनो, तो निर्माण कर सकेंगे अर्थात छोटा न, परंतु बड़ा न का ज्यादा अर्थ कंस्ट्रक्शन है, और जब दोनों का प्रयोग किया गया तो ज्यादा ये प्रयोग किया जाएगा, पर एक अगर प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ बड़ा न भी हो सकता है। निर्माण निर्माण, तो ये हो गया निर्माण। लास्ट पॉइंट ग्यारहवीं, बाबा ने कहा न्यू प्लानिंग करो, नई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई तो नवीनता हो प्लानिंग में, नवीनता लानी है प्लानिंग में। टोटल 11 पॉइंट्स है कल की मुरली में। वैसे मुरली कुछ बाबा ने कहा ना, मैं मुरली सुनाने नहीं आया हूं, स्नेह देने आया हूं, स्नेह का रिटर्न देने आया हूं, इसलिए मुरली जैसी मुरली नहीं है वो, उसमें मुलाकात हो रही है, कुछ पॉइंट इधर की उधर की, इससे मिल उससे मिल, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, तो उस आशय की। तो सबसे पहली बात बताई प्रेम, दूसरी बात बताई ड्रामा, ड्रामा में ये था प्रेम का रिटर्न मिलना था, तीसरी बात बताई उमंग उत्साह, जहां है वहां क्या होगा, थकान नहीं होगी। चौथी बात वीआईपी की सेवा, उनको क्या करना है, दृष्टि देना है, सामने जाने की जरूरत नहीं, दूर से टीवी पे जब देखते हो तो भी दृष्टि दी जा सकती है, दूर से भी। तीन सत्ताओं की सेवा रोज करनी है, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता, रोज अमृत वेला इन तीन सत्ताओं को इमर्ज करना है। धर्म सत्ता में क्या क्या आएगा, सारे साधु संत अखाड़े, सन्यासी तपस्वी उदासी, जगत गुरु, शंकराचार्य, तीर्थंकर, बुद्ध, ईश्वर पुत्र, अवतार, धर्म धर्म स्थापक, धार्मिक गुरु, धर्मावलंबी, आस्तिक, वो सब आएंगे उसमें, एक धर्म सत्ता। दूसरा विज्ञान सत्ता को इमर्ज करना, जिसमें कौन आएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब 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 आ जाएंगे उसमें, विज्ञान सत्ता। तीसरा राजसत्ता, राजनीतिक दल, पार्टियां, सबको एक, उसको सकाश मत देना जिस पार्टी के हम समझते हम हैं ये जीत जाए, ये जीत जाए अगला इलेक्शन, ऐसी सकाश नहीं होना तो सारी पार्टियां एक साथ खड़ी है, और केवल एक देश की नहीं, सारे देशों की सारी पार्टियां, तो उन सबको एक साथ होलसेल सकाश दे देनी है। तो तीन, धर्म, सत्ता, विज्ञान, ये अमृत वेला ये काम करना है। अमृत वेला महत्वपूर्ण कार्यों में, एक बार कहा था ना बकेट लिस्ट, वो भी करेंगे कभी। पांच, चार धाम की यात्रा होनी चाहिए, सूक्ष्म वतन में बाप से बातें होनी चाहिए, परम धाम जाना ही है, परिक्रमा लगा रहे हैं ना सब, परिक्रमा, विश्व की परिक्रमा, मधुबन की परिक्रमा, ऑफिस की परिक्रमा, अपने डिपार्टमेंट की परिक्रमा, लौकिक घर की परिक्रमा, उसके बाद में सेवा केंद्रों की परिक्रमा, कर्म क्षेत्र की परिक्रमा, और मोबाइल की भी परिक्रमा लगा लेना आप ले, थोड़ा सा इसको भी सकाश की आवश्यकता है, घूम लेना थोड़ा सा। तो परिक्रमा, उसके बाद में कौन सी पॉइंट थी, कहां थे, वीआईपी, वीआईपी के बाद पदयात्रा। तो पहला हर काम मुश्किल होता है, बाद में वो सहज होता है, इसलिए मुश्किल लगा तो छोड़ नहीं देना है किसी काम को, डटे रहना, लगे रहना, सहज हो जाएगा। उसके बाद क्राइस्ट एंड कृष्ण, तो कृष्ण की राशि और क्राइस्ट की राशि, दोनों का जीवन में बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज है, ऐसा भी कहा जाता है। इस क्राइस्ट द इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण, कई लोग कहते हैं भक्ति मार्ग में, हम तो नहीं कहेंगे, पर कई लोग ये कहते हैं कि शायद जीजस क्राइस्ट कृष्ण ही है, ऐसा भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, क्राइस्ट बुद्धा एंड, क्राइस्ट बुद्धा एंड महावीरा आर बट द वेव्स ऑफ इन्फिनिट कॉन्शियसनेस दैट आई एम, मैं वो समंदर हूं जिसमें ये क्राइस्ट बुद्धा कृष्ण ये सब लहरे है, वो समंदर मैं हूं। ये वेदांत का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें सब कुछ एक ही है। तो अगला लंदन, तो मुरली, मुरली अमृतवेला योग और वातावरण शक्तिशाली। अगला ब्राह्मणों की भी पालना करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसके लिए ब्राह्मण परिवार की भी परिक्रमा करना, यज्ञ की भी परिक्रमा, एक है मधुबन की परिक्रमा, एक है यज्ञ की परिक्रमा, एक है ब्राह्मण परिवार की परिक्रमा, एक है सारे सेवा केंद्रों की परिक्रमा, उसमें और चार बन गए। यज्ञ निराकार है, कौन सा यज्ञ, यज्ञ दिखता थोड़ी है, निराकार है, उस यज्ञ की भी परिक्रमा, तो ये यज्ञ निर्विघ्न हो जाए, सारे सेवा केंद्र स्थूल जो मकान है उनकी परिक्रमा वो निर्विघ्न हो जाए। ये ब्राह्मण परिवार जिसमें सारे ब्राह्मण आत्माएं बैठी है, और हम सारे ब्राह्मण आत्माओं की परिक्रमा करें, और क्या करें, उनको एक स्नेह के सूत्र में बांध दे, उनको वरदान देना है, सहयोग दे दो अच्छा तो उनको शक्तियां देनी है, उनको ज्ञान की, योग की शक्तियां चाहिए, ज्ञान तो सबको पता है, पावर चाहिए उनको बस। तो ये सका, उसके बाद में हाजी का पार्ट, हाजी करते रहो तो उसमें पावर आती जाएगी, हाजी करते रहो तो बाबा ने कहा हुजूर बन जाओगे, और हाजी ये मूल संस्कार था, नेचुरल संस्कार था सभी आदि रत्नों का, एक ही भाषा बोलते थे, ऐसा लगता है सब एक ही टोन है, सबका भाषा भी एक है, टोन भी एक है, एक दादी बोलती है तो ऐसा लगता है ये कोई दूसरी दादी बोल रही है, सेम भाषा बोलते हैं, एक ही चक्की का आटा। उसके बाद में निर्माणता, तो निर्माणता लानी है तो निर्माण कर सकेंगे, विनम्रता जब तक नहीं तब तक नयापन कहां से आएगा, अहंकार रहेगा मैं सब जानता हूं, निर्माण रहेंगे तो निर्माण कर सकेंगे, वो केवल सतयुग के निर्माण छोड़ो, नया निर्माण इधर भी। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, नई प्लानिंग करनी है। तो ऐसी ये 11 पॉइंट्स थी कल की वाणी की, ऑप्शन थे।
कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना झुक जाना तेरा काम नहीं जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उतर आए तुझको करना आराम नहीं तुझको करना आराम नहीं तूफान आए तो आने दो यार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं तूफान आए तो आने दो करो बदनाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं तूफान आए तो आने